भक्ति का एक बूंद स्फूर्ति किया और रूप गोस्वामी ने उनकी उसी कृपा को लेकर के श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं जैन भूतले पृथ्वी भर में विश्व में महाप्रभु जी की भावना को उनके मनोभीष्ट को जगत में प्रकाशित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या हो सकता है, इसको थोड़े से में ही श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री रूप गोस्वामी और स्वरूप दामोदर जी के शब्दों में उसको वर्णन किया। अनर्पित चरिंग चिरात करुणिया वतीर्ण कलो समर्पयित तुम उन्नतोज्जल रसांग स्वभक्ति समर्पयित तुम, जो बहुत काल तक चिरताल काल तक जो नहीं दिया गया वो अनर्पित उन्नत उज्ज्वल रस की सी भक्ति की जो शोभा है उसको देने के लिए आए थे। और कुछ भावों को जिनको आज तक आस्वादन नहीं कर सके थे कृष्ण, उनको आस्वादन करने के लिए आए। क्या भाव आस्वादन करने के लिए आए? कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु है, यह बात ठीक है, किंतु एक रस है और अनेक रस है। एक रस में कोई भी चीज ऐसा अछूता नहीं बचा है जो जिसको कृष्ण का अनुभव न हो, क्योंकि अखिल रसामृत सिंधु है, सभी कुछ उनको पता है। किंतु अनेक रस में जब अपने परिकरों के भावों का रसास्वादन करना चाहते हैं, ये संभव उनके लिए नहीं होता। राधा जी के कुछ ऐसे भाव हैं, प्रेम का अत्यंत ऊंचा भाव है जो कृष्ण के पास में नहीं, इसलिए उस भाव का आस्वादन करने के लिए ये जगत में है। कौन? कृष्ण ही। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, यही दुई इच्छा हेतु लीला रूपकम। अत्यंत करुण है, रसिक शेखर है, कुछ तो अपने भावों का आस्वादन करने के लिए और कुछ राग मार्ग भक्ति प्रचारण, राग मार्ग भक्ति का प्रचारण करने के लिए, जगत को देने के लिए एक नवीन चीज जो किसी भी लीला में किसी भी नहीं दिया, कृष्ण ने भी नहीं दिया। कृष्ण लीलाओं को आस्वादन करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं हो चाहिए, साधन होना चाहिए, उस साधन को चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नहीं दे सके। इसके अतिरिक्त चैतन्य महाप्रभु भी अपने भावों में सब समय निमग्न रहते थे, ऐसे निमग्न रहते थे जो उनको फुर्सत नहीं, और जहां कहीं कुछ कृष्ण लीला का चिंतन किया भाव में आविष्ट हो जाते, इसलिए वो भी कुछ नहीं दे सके। ये कैसे, किस प्रक्रिया से, किस साधन के द्वारा हम लोग कृष्ण के जुगल किशोर की हम लोग सेवा कर सकते हैं? इसलिए राग मार्ग एक नई चीज दी जो आज तक किसी भी आचार्य ने भगवत तत्व ने भी नहीं दिया, और उसकी प्रतिष्ठा जगत में श्रील रूप गोस्वामी ने की। दो तीन दिन से हम लोगों का यहां पर विचार चल रहा था वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति का, कुछ विचार चल रहा था। उसमें हमारे भट्ट जी यहां के बड़े भारी उद्भव विद्वान डॉक्टर और भक्ति ग्रंथों का अनुशीलन करने वाले वो भी, और भी बहुत बड़े बड़े लोग थे, इस पर अपने अपने कुछ विचार प्रकट किए। उसमें कुछ शंकाएं उभरी, मैं कल कुछ उसका सामंजस्य करना चाहता था, किंतु 8:30-9 बज गया, इसलिए मैं कुछ नहीं रख सका। लोगों की बड़ी इच्छा थी जब मैं इस पर कुछ बोलूं, तो इसके संबंध में मैं थोड़ा सा जो कि मैंने समझा है रूप गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के विचारों में आज थोड़ा सा उसका कुछ अंश मैं आप लोगों को के सामने प्रस्तुत करता हूं। कल विषय ये रहा था परसों रागानुगा का वैधि तो ठीक है, हम लोगों को वैधि भक्ति में ही साधन करना है। जब तक कि शुद्ध लोभ न उत्पन्न हो जाए वैसी सेवा करने का, तब तक किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। और लोभ का भी कुछ ठोस आधार है, ऐसे ही लोभ जैसे तैसे कहने से नहीं हो जाता। उसके कुछ लक्षण हैं, स्वरूप लक्षण हैं, तटस्थ लक्षण हैं। ये सब होने पर समझो जो इसको लोभ उत्पन्न होने में भी महाराज जी ने अभी बतलाया कोटि कोटि लोगों में कोई भक्तों में भी एकांती कृष्ण भक्त उन्हें बड़ा भारी दुर्लभ है। कोटिस्वपी महामुने, और उन लोगों में भी महाप्रभु जी के भाव को ग्रहण करने वाले बहुत कम, और उनमें भी उनका अनुभव करने वाले भी तो संख्या हम समझते हैं कि बहुत बिरले इस जगत में होगी। इसलिए जिनको सचमुच में कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियातांग कुतोपि लभ्यते तत्र लोभम कोटि जन्म सुकृत नल, कोटि कोटि जन्मों की सुकृति से साधु संग मिल सकता है। और उसमें श्रद्धा भी आ सकती है, साधुओं का संग होगा और उनके द्वारा कृष्ण की सेवा की वासना उसमें आ जाएगी, श्रद्धा से निष्ठा रुचि इत्यादि हो जाएगी। किंतु ऐसे रसिक भक्तों के संग जैसे रामानंद इत्यादि हुए बहुत ही दुर्लभ है। जिनके हृदय का सब कुछ रसगुल्ला जैसा रस में पगा हुआ हो, जिसकी मति, ऐसे भक्तों के संग से ही वैसा लोभ उत्पन्न हो सकता है जो बहुत कम है। चैतन्य महाप्रभु जी ने उसका ये रस का एक बिंदु चखाया था। इसमें ये प्रसंग आया कि रागानुगा भक्ति क्या है। वैधि भक्ति तो हम लोग जानते हैं और उसका आचरण हम लोग कर रहे हैं। मैं रागानुगा भक्ति का कोई भक्त नहीं, किंतु हमने जो तटस्थ रूप से मैंने जो अनुशीलन किया उसके रूप में हम विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथों से जैव इत्यादि धर्म से, उसमें एक है वैधि भक्ति और दूसरा है रागानुगा। रागानुगा किसको कहते हैं? रागानुगा को समझने के पहले रागात्मिक भक्ति को समझना होगा। रागात्मिक भक्त जिसके आत्मा में राग हो, क्या राग? इष्टे स्वारस की राग परमावेष्टिता भवेत तन्मयी जा भवेत भक्ति सा रागो। इष्ट में कौन इष्ट? कृष्ण में। स्वारस की राग स्वाभाविक नयंतर्जमयी तल धारावत अविच्छिन्न गति से नित्य प्रवाहित होने वाली, जिसमें एक सेकंड का गैप नहीं हो, ऐसी राग हो। जैसे किसी रंग में कोई कपड़ा डुबो दे तो उसमें उस रंग का रंग आ जाता है कपड़े, उसी प्रकार से इष्ट में अनुराग हो। अनुराग का भी श्री रूप गोस्वामी ने परिभाषा दी है। और परमाविष्टता जैसे चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देखिए, रूप गोस्वामी के जीवन में देखिए और हमारे गोस्वामी लोगों के अंदर में देखिए कैसा। राधा कुंड तटे कलिंद तनया तीरे चंशी बटे प्रेमोन्माद वसात शेष दशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायंतौ च हरे गुण बणम भावा विभूतौ। हे राधे ब्रज देवी के चलते हे नंद सुनो कुतम तरे कालिंदी बन्ने भूषण तावित सर्वतौ खेदई महापी बलौ बंदे रूप। ये सब राग हैं। तन्मयी जा भवेत भक्त, ऐसे तन्मयी जो भाव उसको ग्रहण करने के लिए, उसे पाने के लिए तीव्र लालसा जगी है, घर बार तो अपने छूट जाएगा। काम क्रोध लोभ मद मोह सब कहां गया? यदि ऐसी थोड़ी सी भी प्रवृत्ति का आभास भी यदि हो गया तो क्या होगा? ये सब चीजें अनर्थ अनर्थ कहां दूर होकर चली जाएंगी। तो उनके अनुगत्य में जिनके राग है, उनके अनुगत्य में यदि हो तो रागानुराग होते हैं। इसको और थोड़ा सा विशेष रूप में समझिए। रागानुराग भक्ति को समझने के लिए जो बतलाया, रागात्मिक भक्ति जो ब्रजवासियों में है, ब्रजवासी केवल नहीं वहां के हिरणों में है, हिरणों में नहीं गायों में, बछड़ों में, पहाड़ों में, नदियों में, रग रग में, ब्रज की भूमि के रण कण कण में यह अनुराग है स्वाभाविक। हिरण को देखिए, धन्यास्मतो मूढ़ मतयो हरण्येता। नदी के संबंध में कैसा बतलाया? नद्दस्तदा उपधार्य मुकुंद। ये भ्रमर नहीं है, इनके प्रेम का अनुराग है जो भ्रमर के रूप में घूम रहा है। तो ये सब वहां के पशु पक्षी कीट पतंगों में भी स्वाभाविक रूप से, वे सभी क्या हैं? रागानुगा नहीं, रागात्मिक जन हैं। रागात्मिक जनों को दो भागों में भागा विभाग किया गया। मैं रागानुगा बतलाने के लिए थोड़ा सा अवतारणा कर रहा हूं। तो एक है संबंधानुगा और एक है कामानुगा। संबंधानुगा क्या? जिनका कृष्ण के साथ में कोई संबंध है, गुरु ही संबंध को देते हैं। वो संबंध क्या है? ये मेरे सखा हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे प्रियतम हैं, मेरे पति हैं, मैं उनका दास हूं। ये सब संबंध हनुमान जी में, ये मेरे प्रभु हैं, मैं उनका दास हूं और उनकी सेवा करते हैं। ये इसमें भी रागात्मिक है, किंतु रागात्मिक भी दो भागों में है, जिसमें कुछ मर्यादा मिश्रित है और जो किसमें मर्यादा से रहित है, शुद्ध है। वैकुंठ में, अयोध्या में, द्वारका तक में कुछ ऐश्वर्य मिली हुई रागात्मिक भक्ति है। ब्रज में विशुद्ध रूप से है, मर्यादा है किंतु नरलीला के अनुरूप वो सब लीलाएं हैं। तो संबंध अनुगा में दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर श्रृंगार रस काया, इन लोगों के अनुगामी होकर के यदि भजन करने की लालसा, जब वैसे ही मैं सेवा पाऊं और ऐसी तीव्र लालसा हो तो ये उसी के अधीन ये पांच प्रकार के रागानुगा भजन करने वाले साधक होंगे। रह गई अब कामानुगा। कामानुगों के लिए बहुत उन्नत भाव में ले गए। बोले ये क्या है? केवल ब्रज गोपियों में ही है और कहीं नहीं है, द्वारका के महिषियों में तक में भी ये चीजें नहीं है। और यहां तक कि ये जसोदा मैया नंद बाबा और सखाओं में भी ये चीजें नहीं है। कामानुगा वाला उसमें, मैं रूपानुग के तरफ में अब चल रहा हूं, कामानुगा भी काम माने यहां पर प्रेम समझो, प्रेम का विलास, प्रेममयी जो कृष्ण की लीलाएं हैं उसमें एक होता है संभोग इच्छामयी, जो श्रीमती राधिका का युद्धेश्वरियों का स्वतंत्र रूप में कृष्ण के प्रति भाव है, ये युद्धेश्वरी की ओर। और एक होती है तत्त्व भाव इच्छामयी, अपने अंदर में कोई भी लालसा नहीं भोग की, केवल माता राधा कृष्ण और युद्धेश्वरियों के साथ में उनको मिलन करा करके उनको सेवा का सुजोग देने का भाव, यही उनके अंदर में रहता है। ये केवल रूप गोस्वामी अततरु मंजरी इत्यादियों के हृदय में, इसलिए इनके भाव को तत्तद इच्छा मई रागात्मिक भक्ति है। यदि इसको पाने के लिए किसी के अंदर में श्री चैतन्य चैतामृत पढ़कर हमारे रूप महाप्रभु और राय रामानंद के संवाद को सुनकर, सुनने से ही होगा, पढ़ने से नहीं होगा, उनकी कृपा से ही होगा, या तो भगवान की कृपा से या भक्तों की कृपा से है, और उसमें भी भगवान की कृपा भक्तों की कृपा की अनुगामिनी है। महाराज जी ने अभी ये बतलाया, बिना भक्तों की कृपा के भगवान की कृपा कदापि नहीं हो सकती। आराधना नाम सर्वेशां परम तस्मात् परतर देवी। अच्छे बतलाओ, भगवान के तो बहुत से तदीय हैं, ब्रज में भी लीजिए बहुत से तदीय हैं, वृंदा जी भी उनकी तदीय हैं, तुलसी भी हैं, गिरिराज गोवर्धन, सब कुछ उनका तदीय है, किंतु तदियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? सबसे उनके हृदय में विराजमान रहने वाली श्रीमती राधिका जी, उनसे बढ़कर के और कोई भी तदीय नहीं है। उनका यदि कोई शरणागत हो तो कृष्ण की कृपा अपने आप उस पर ऊपर में ठरक उठेगी। इसलिए यहां कहते हैं रागानुगा में उतने ही प्रकार का रागानुगा है जितने में रागात्मिक वाले हैं, दास सख वात्सल्य मधुर सभी। उसके जैसे सख रस में किसी को लोभ हुआ जो कृष्ण के साथ में गैया चराता हुआ उनकी मैं सेवा करूंगा, तो सुबल सिदाम दाम सुदाम मधुआन इनकी का स्मरण करते हुए कृष्ण का स्मरण करें और उसके अनुगत होकर के सुबल इत्यादि का भजन करें, ये हुआ, ये भी रागानुगा हुआ। यशोदा मैया नंद बाबा या सखाओं या दासियों के भी वृंदावन में शुद्ध दास्य है, कैसा शुद्ध था, हनुमान जैसा नहीं, उससे भी ऊपर का, कुछ वात्सल्य भाव मिला हुआ, कुछ सख्य भाव मिला हुआ। यहां का दास ऐसे नहीं है जैसे वैकुंठ का और अयोध्या का। तो यहां पर रागानुगा तो ये सभी रागानुगा हुए, दास सख्य वात्सल्य और मधुर तक, किंतु उसमें संबंधानुगा गोपियों तक में हुआ उनके कृष्ण के शास्त्र में, किंतु इनमें एक अद्भुत वैचित्र उसमें है जो और किसी में वो वैचित्र ही नहीं है। वो क्या है? उसी को रूप गोस्वामी जी व्यक्त करते हैं, वही महाप्रभु जी की लालसा है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले। ये तो रागानुगा का बतलाया, किंतु रूपानुगा क्या है? इसको कहते हैं रूपानुगुरु वर्ग की जय। हम अपने गुरुदेव को रूपानुगा, हम अपने गोस्वामियों को माधवेंद्रपुरी से लेकर के और अब तक के जितने भी आचार्य हुए हैं अपने को रूपानुगुरु गौरव वैष्णव कहने में गौरव बोध करते हैं। हम लोगों के गुरु महाराज जी पूज्यपाद परम पूज्यपाद माधव महाराज जी, पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी, पुरी महाराज जी और सब जो ये रूपानुगुरु वैष्णव है, ऐसा कहने से हृदय में उल्लास होता है और हृदय फूल उठता है। क्यों? इसमें कुछ बात है। रूपानुग इतना जो हुआ इसमें रूपानुग नहीं है, रूपानुग एक स्पेशल चीज है। क्या? रूप को स्वामी चैतन्य महाप्रभु की जो मनोभिलाषा पूर्ण किए, रूप को स्वामी का बाह्य और अभ्यंतरिक जो साधन भजन और सिद्ध भजन था उसको जो अनुभव करके ग्रहण करता है वो ही रूपानुग है। रागानुगा तो अवश्य ही होगा, कोटि कोटि रागानुगा में रूपानुग खूब विरल है। जो रूप गोस्वामी के विचारधारा को साधन के जैसे वो साधन करते हैं और सिद्ध अवस्था में रूप मंजरी के रूप में जो सेवा करते हैं उसको संपूर्ण रूप से जो ग्रहण कर सके समझ बूझ करके सदगुरु के द्वारा सेवा के द्वारा और विशेष करके महाप्रभु की कृपा, ये रूप सनातन स्वरूप दामोदर की कृपा यदि हो तो ये याद समझ करके उसमें प्रवेश कर सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी का जो अनुगमन करे कैसे? संख्या पूर्वक नाम गान नतिवी कालावसानी, इसके अतिरिक्त तन नाम रूप चरितादि सुकृतनानुक्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलाम इत्युपदेश सारम। रूप गोस्वामी का यह अंतिम विचार, समस्त उपदेशों का सार, चैतन्य चैतामृत कहो या जितने भी हैं संवाद हैं, उस सब का सार एक श्लोक में उन्होंने व्यक्त किया। कृष्ण ही हमारे ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर आराध्य है। तो इस श्लोक क्या बोला, तन नाम रूप चरिता, मन के द्वारा उनका उन लीलाओं का स्मरण करते हुए और जीवा के द्वारा उन नामों का गायन करते हुए कीर्तन करते हुए रसिक तत्वज्ञ अनुभूति परायण और संसार से विरक्त महात्माओं के आनुगत्य में इस ब्रज में रहते हुए यदि उन्हीं के अनुसार में भजन करे रूप गोस्वामी जैसा, ऊपर का भाव कैसा है साधक जैसा, महाप्रभु के परिकर के रूप में यह भाव, और आंतरिक रूप में क्या जिस रूप में सिद्ध स्वरूप में उनकी सेवा करते हैं राधा कृष्ण जुगल की, ये ऐसे भावों को ग्रहण करने के लिए जो उस पथ पर अनुगमन करता है रागानुगाम मार्ग पर, उसको रूपानुगम कहते हैं जो रूप गोस्वामी का विचार ले। और नहीं यदि कोई ले रहा हो सखाओं का भाव, कोई जसोदा मैया का, ये कम नहीं है। महाप्रभु ने कहा ये सर्वश्राद्ध साध तो भी कुछ आगे कहिए, कम तो नहीं। किंतु रूप गोस्वामी का खास विचार क्या है इस पर हम विचार करें, उनका शुद्ध स्वरूप क्या है, महाप्रभु के परिकर के रूप में महाप्रभु के मनोभिष्ट पूर्ण करने वाले और कृष्ण लीला में वो मंजरी स्वरूप है। इनके भावों को जो लेकर के भजन करता है उसको रूपानुगम कहते हैं। इसलिए सब ये जितने बतलाया ये इसमें से कोई नहीं है। दूसरी बात एक और कि रूप गोस्वामी जी कृष्ण के नित्य लीला में है कि नहीं, कुछ लोग कह देते हैं कि रागानुगा वहां पर रूपानुगा भी वहां है। जहां तक प्रकट धाम का विचार है वहां तो जरूर हो सकता है प्रकट ब्रज में, किंतु अप्राकृत ब्रज में रूपानुग होने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि रूप गोस्वामी वहां नहीं है, वो महाप्रभु के प्रकोष्ठ में गोलोक वृंदावन के एक विशेष प्रकोष्ठ में वहां नित्य है, कृष्ण के लीला में रूप मंजरी के ही रूप में है, और वहां पर साधन नाम का कोई चीज नहीं है। ये रागानुगा कहो कामानुगा कहो रूपानुगा कहो ये सब साधन है जिसके द्वारा हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं गोलोक वृंदावन में। इसलिए जब वहां पर साधन ही नहीं है तो अनुगा का कोई तात्पर्य नहीं। हाँ रूपानुग को दूसरे रूप में ले सकते हैं, वहां पर सखियों का अनुगमन जरूर है, ललिता जी का गण है, युथेश्वरिया है, गण है, गणों के अंदर में फिर रूप मंजरी रति मंजरी इत्यादि हैं, इनके अनुगत्य हो सकते हैं, किंतु इस तरह का अनुगम उस रूप में जो रूपानुग है कि रागानुगा उस गोलोक वृंदावन में नहीं है, वहां पर केवल सिद्ध है और वहां पर सभी रागात्मिक हो जाते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी रागानुगा नहीं, वो क्या है रागात्मिक जन है। वहां पर जब हिरण मृग तक रागात्मिक है तो रूपानुका और अनुका तो कोई प्रश्न नहीं होता है। इसलिए इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हम उपदेशामृत में चलें और वहीं से आरंभ करें। बाचो वेग मनस क्रोध वेग जीवो दुरोपस्त वेग एतान विगान जस सर्वाम अपिमाम पृथ्वी सर। रूप गोस्वामी ने किसी को शिष्य नहीं किया, महाप्रभु जी ने भी किसी को शिष्य नहीं किया, रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को अंगीकार किया इसके अतिरिक्त और नहीं, किंतु सारा जगत उनका शिष्य है। रूपानु कहने में रूप का शिष्य कहने में सभी लोग गौरव बोध करते हैं पहले ही बताया। इसलिए हम लोग तन नाम रूप चरित आदि सुकृतानु सब समय उनके लीलाओं का चिंतन करेंगे। कौन करेगा, साधारण आदमी नहीं कर सकता, इसलिए पहले करेगा जिसका बाक वेग, मन का बाक का वेग, ये जीवा है ये लंगड़ी लूली है, इसको रीढ़ नहीं है, जिधर जिधर लप लप आती है उस पर कोई कंट्रोल, मन पर कंट्रोल कर लेगा, इस पर कंट्रोल करना बड़ा भारी कठिन है। महाराज जी ने बतलाया नहीं जो कैसे वैष्णव अपराध कर देते हैं, यह लंगड़ी लूली जीवा के कारण में होता है जिसका कंट्रोल में नहीं होता। ये ऐसी स्वतंत्र है जो मन को भी बेग को संभाल सकते हैं यदि इस जीवा के बेग को संभाल लिया, अन्यथा ये होना बड़ा भारी कठिन है। मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग, इसको कुछ चेष्टा करनी चाहिए। केवल साधन भजन करेंगे और इनको दूर करने की चेष्टा नहीं करेंगे तो भजन नहीं हो सकता। अत्याहार प्रहास चश्च प्रजल पूर्णिमाग्रह जन संघर्ष लौलंच षड विभक्ति विनिश्य, इनसे भी बचना चाहिए, संक्षेप में बतला रहा। और फिर भक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्या तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागार सतो वृत्ति प्रसिद्ध है। उत्साह यदि भगवान का भजन करते हैं, नाम करते हैं और दिन रात बिल बिलाते रहते हैं और केवल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, चित्त प्रसन्न नहीं होता, ज्ञात्मा संप्रसिद्धति, तो भक्ति क्या है? इस चीज को समझिए। भगवान का नाम करने से भगवान खुद उतर जाएंगे, ये नाम क्या है, राधा कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण के मन को भी जो हरण कर लेती हैं, ये श्रीमती राधिका जी के लिए पहले हरे और इसके बाद में कृष्ण, ओ आनंदमय और सबको आनंदमय करने वाले, सबको आकर्षण करने वाले, ऐसे ये जो कृष्ण हैं। हमारे गोस्वामी ने तो केवल दो ही का नहीं, एक एक पद का हरे कृष्ण का, और यहां तक कि हरे कृष्ण 32 अक्षरों की बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या की हमारे जीव गोस्वामी इत्यादि ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, रघुनाथ दास गोस्वामी ने। इसलिए इसको हरिनाम को केवल हरे कृष्ण मत समझो, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, जो स्वरूप में भी रस नहीं है इन नामों में उन्होंने भर दिया है, इसे रस स्वरूप है। थोड़ा सा हरिनाम करके देखो तो वैसे ही अनर्थ मुक्त होकर, संबंध से युक्त होकर, भक्ति विनोद ठाकुर के बतलाए हुए मार्ग से यदि चलो, भजन करो, देखो नाम अपने आप हृदय में उतर आएगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा ना, प्रकाशानंद सरस्वती यात्री से कहा, मैं जब रहा था उन्होंने जो मंत्र दिया गुरु, और देखा श्याम छबीला लड़का आया और मैं उसके पीछे दौड़ा और पकड़ने के लिए दौड़ा, थोड़ा सा इधर उधर करता हुआ वो झाड़ियों में कहीं चला, मैं वही मूर्छित होकर, गुरुजी आपने क्या मंत्र दिया, मैं कैसे, ये मेरी अवस्था जो मैं रो रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, ये कर रहा हूं, मैं समझता कोई भूत जैसा लग गया। गुरुजी ने कहा, महाप्रभु जी कहा, हमारे गुरुजी ने कहा, आलिंगन किया और बोले तुम्हारा जीवन शांत हो गया, मंत्र का स्वरूप उसके इष्ट देव उसके हृदय में उठाए। इसलिए हम लोगों को इस रूप में हरिनाम करना, नाम में सारी चीजें हैं, यदि मन थोड़ा सा इसमें अनर्थ निवृत्ति होने के बाद में रुचि आ गई, फिर गिरने का डर नहीं। महाराज जी कह रहे हैं जब मैं गिरी नहीं, आप कृपा करें, हमसे छल ना कर रहे हैं, हमको ये शिक्षा दे रहे हैं, आप मत गिरिए या दूसरे न गिरे। जहां रुचि आई अब गिरने का प्रश्न बहुत कम रह जाएगा, यद्यपि भावावस्था से भी गिरने की बात कही गई है, किंतु जहां टेस्ट आया, नाम का रस आस्वादन होने लगा, फिर क्या होगा, संसार भूल जाएगा, अपने को भूल जाएगा। महाप्रभु जी जोर से हरिनाम करो, विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, पद पद में रसानुभूति होगी, आनंद समुद्र में निमग्न हो जाएंगे। महाप्रभु जी रोज रो रो करके कहें, ऐसी तुम्हारी दया, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्तरा पिता निमित्त स्मरण, और कहा मैं दुर्दैव, ऐसे नाम में रुचि नहीं हुई, इसलिए उत्साह निश्चय जरूर पाएंगे, धैर्य रखो, एक जन्म नहीं 10 जन्म में 1,00,000 जन्म भी हो जाए तो बहुत समझो, महाप्रभु के किसी प्रकार ने ऐसा बदला है। धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागात सतोवृत्ति, सतोवृत्ति माने हमारे आचार्यों ने जिस वृत्ति का अवलंबन करके जीवन को धारण करके भजन किया है। कैसा, कोई वृंदावन से गया महाप्रभु के पास में, पुरी में, महाप्रभु जी ने कहा जी हमारे भक्तों की जरा बात तो करो, ये कैसे वो रहते हैं, कैसे भजन करते हैं। तो कभी चना कभी वो भी मना, एक एक वृक्ष के तले रहते हैं, कभी स्थूल भिक्षा और प्राय माधु करी, कभी चना कभी वो भी मना, कभी नमक भी नहीं, और आकर के दिन रात भजन करते हैं। महाप्रभु सुन करके बड़ी आनंदित। तो इस तरह से शतोवृत्ति अवलंबन, भाई भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है, साबुन का कारखाना कर लिया जाए, कोई सन्यासी सोच रहे हैं, और यदि कोई एक पुस्तक की दुकान लगा दें, ये बहुत बिक्री होगी, साबुन के कारखाना से हमारा मठ भी चल जाएगा, ये भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं, ये सतोवृत्ति नहीं है। हमारे रूप सनातन ने, हमारे गोस्वामियों ने, हमारे प्रभुपाद जी ने, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो वृत्ति अवलंबन करके भजन किया है, वैसे ही सतोवृत्ति षड्पर भक्ति प्रसिद्ध है। ददाति प्रतिग्रहणाति कृष्णैत जस्य वाची, उनको स्मरण करो, उनका आदर करो, जो एक नाम भी करते हैं, और दीक्षा इत्यादि के साथ में जो नाम करते हैं कहीं भी हो, और सचमुच में विद्वत रूढ़ी वृत्ति से उनकी दीक्षा हुई है, तो क्या करो, उनको प्रणाम करते हुए उनको आदर दो। और जो दिन रात निंदा इत्यादि से शून्य होकर के सब समय कृष्ण का स्मरण करते हैं, यथा योग्य वैष्णव को आदर देते हैं, कनिष्ठ को कनिष्ठ, मध्यम को उत्तम को उत्तम, जैसा ऐसा नहीं कि किसी कनिष्ठ को भी उत्तम का ये कर दिया, ये अपराध हो गया, ऐसा नहीं। और अंत में यदि रुचि भी नहीं है वैष्णव का किसी प्रकार से, कुछ सित रूप या क्रोध देख करके भी मत उनका निरादर मत करो। यदि हरिनाम में रुचि नहीं है तो क्या करो, पुनः पुनः करो जब तक कि रुचि नहीं आ जाए। जैसे रोग में